हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग ओवरव्यू। ओम अख्यंतिमरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं भंगो लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरे अध्याय में बहुत सारी चीजें मिला के बताई हैं, उसको स्पष्टीकरण करके इस अध्याय में हमको बताया है। तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो मुझे इतना सारा बता दिया है, कर्म योग और ज्ञान योग और बुद्धि योग, ये सब मुझे सही तरह से समझ में नहीं आ गया, क्योंकि आपने बहुत मिला के बताया ना, तो आप क्या करो, आप मुझसे एक बात बताओ कि इनमें जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है वो मुझे बताओ। और तीसरे से लेकर श्लोक नंबर 9 तक अर्जुन को भगवान बताते हैं कि भले ही ज्ञान योग कर्म योग से बेहतर है, मगर फिर भी तुम कर्म योग करो, क्योंकि तुम अभी तक ज्ञान योग के लिए पात्र नहीं हो। ये पहला पार्ट है जिसमें भगवान अर्जुन को कर्म योग करने की सलाह देते हैं। असल में क्या है, 4 चीजें हैं। एक कर्म योग है, एक कर्म कांड है, एक विकर्म है और एक ज्ञान योग है। इसी ये 4 चीजें जो है वो भगवान ने दूसरे चैप्टर में समझाई हैं, लेकिन अर्जुन को सिर्फ 2 चीजें समझ में आई हैं, या तो कर्म करना है कर्म योग, और या कर्म करना है समझ में आया, और दूसरा कर्म नहीं करना मतलब ज्ञान योग। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कर्म करूंगा तो अपराध लगेगा, क्योंकि मेरा कर्म ही तो विकर्म है जिससे सबकी हत्या होगी, और कर्म नहीं करूंगा तो वो तो है ना ज्ञान योग हो जाएगा, मतलब वो तो है ना बुद्धि योग हो जाएगा। तो अर्जुन ने विचार किया कि भगवान ने जो युद्ध करने का उपदेश दिया है उससे तो अच्छा है कि मैं कर्म त्याग दूं, है ना, उससे अच्छा ये कि समाधि में स्थित हो जाऊं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि कर्म ना करना यानी बुद्धि योग में स्थित होना अधिक श्रेष्ठ है, तो फिर मैं क्यों ये वाला कर्म करूं जो युद्ध वाला कर्म है। तो उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो, बुद्धि योग यानी कर्म को त्यागना या ज्ञान योग या संन्यास योग एक ही चीज है, उसके लिए पात्रता चाहिए होती है। क्योंकि हृदय में यदि कर्म अभी तक चल रहा होता है और केवल हम कर्म इंद्रियों से करना छोड़ देंगे ना, तो फिर वो वास्तव में कर्म का त्याग नहीं होगा। तो पहले विभाग में तो अर्जुन को भगवान यही समझाते हैं कि तुम अभी तक बुद्धि योग के या ज्ञान योग के या संन्यास के अभी तक योग्य नहीं हो, तो तुमको कर्म करना चाहिए। फिर अर्जुन के मन में ऐसा है कि कर्म करने के लिए या कर्म योग के लिए जो अनासक्ति चाहिए, वो अनासक्ति मेरे अंदर नहीं है, तो फिर तो मुझे कर्म तो फंसाने वाला होगा ना, फिर मैं क्या करूं। फिर भगवान श्लोक नंबर 9 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक यज्ञ की विधि बताते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर कर्म योग करने की क्षमता नहीं है तो तुम कर्म कांड करो। यज्ञ जो होता है वो कर्म कांड होता है, यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कि उसके बदले में मुझे ये मिले ये मिले। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है, तुम कर्म कांड करो, मगर ये सोच कर मत करो कि मैं देवताओं को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मकांड करो। मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्मकांड के यज्ञ करो मगर दिव्य चेतना में करो। यहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम ज्ञान योग के पात्र नहीं हो, यानी बुद्धि योग अभी नहीं कर सकते, तो तुम्हें कर्म योग करना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हें यदि लगता है कि मैं ज्ञान योग का पात्र हूँ या मैं कर्म को त्याग दूँ, तो भी तुम कर्म योग करो, क्योंकि समाज में एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए, एक सही दूसरों को एक सही शिक्षा देने के लिए तुमको कर्म योग ही करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो बड़े लोग जो करते हैं ना, वही तो छोटे जो होते हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए तुम्हें फिर भी कर्म योग ही करना चाहिए, भले ही तुम ज्ञान योग के पात्र खुद को समझते हो तो भी। तो 17 से 25 तक भगवान यही समझाते हैं, और उसके बाद 25 से 35 तक जो श्लोक है उसमें भगवान ये समझाते हैं कि कर्म योग और कर्म कांड में क्या फर्क है, यानी कि कैसे आप कर्म योग करते हुए भी कर्मों के बंधन से नहीं फंसते हो और कर्म कांड जीव को बंधन में फंसाते, और कैसे कर्म योग से आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति भी संभव है। मतलब जैसे अर्जुन का प्रश्न था कि अगर मैं कर्म करूंगा, सबकी हत्या करूंगा, तो मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा और मैं नरक में चला जाऊंगा, लेकिन भगवान उसे बताएंगे कि नहीं, अगर तुम अपना कर्तव्य करोगे, तुम्हारा जो कर्तव्य उसको अगर तुम फॉलो करोगे, तो फिर तुम बंधन में नहीं फंसोगे। तो भगवान जो 25 से 35 में है ना, उसमें भगवान अर्जुन को ये स्पेशल बात बताते हैं, जो कि पहले अर्जुन को समझ में नहीं आती, वो क्या है कि कर्म योग में बुद्धि योग ही सम्मिलित है। बुद्धि योग मतलब कर्म ना करना, और यदि कर्म हम आसक्ति से नहीं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता से नहीं करते, तो वो निष्काम कर्म भी अकर्म बन जाता है। तो ये भगवान उसको बताते हैं 25 से 35 श्लोक में कर्मयोग की महानता। उसके बाद अर्जुन एक सवाल पूछते हैं कि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हमसे अपराध होता है। श्लोक नंबर 36 में अर्जुन पूछते हैं कि हम ना चाहते हुए अपराध क्यों करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो हमसे अपराध करवाती है। तो भगवान उसके बाद 37 से लेकर 43 तक उत्तर देते हैं कि अर्जुन, वो काम वासना ही है जो जीव से अपराध करवाता। मतलब भगवान ये बताते हैं कि देखो, कर्म योग में जीव को निष्काम होना होता है, उसके अंदर काम नहीं होना चाहिए, और यदि काम आ जाता है आपके किसी भी कार्य में, काम मतलब आपकी हवस, आपकी इच्छा यदि उसके अंदर शामिल हो जाती है, तो कर्म योग के अंदर बहुत बड़ी बाधा है, और उस बाधा से, उस रुकावट से कैसे छूटना है, वो भगवान इस अध्याय के अंत में समझे। तो अब हम श्लोक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अर्जुन का क्वेश्चन क्या है। पहला श्लोक, अर्जुन अनुवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सत्काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। दूसरा श्लोक जो है वो उसके साथ ही है। अर्जुन कहते हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसी वे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आपके इन व्यामिश्रित यानी मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है। यानी अब देखो, अर्जुन को भगवान ने, जैसे मैंने बताया कि चार चीजें बताई हैं, कौन सी, कर्मयोग, कर्मकांड, विकर्म और ज्ञान, ज्ञान योग, बुद्धि योग यानी, ठीक है। लेकिन अब इनमें तीन जो हैं, उन तीनों में कर्म है, कर्म योग में भी कर्म है, कर्म कांड में भी कर्म है, और विकर्म में भी कर्म है। और अर्जुन को भगवान ने ज्ञान योग की महानता बताने के बाद भी अर्जुन को बोला कि तुमको कर्म योग करना चाहिए। अर्जुन के माइंड में कर्म योग क्या है? अर्जुन के माइंड में बस इतना ही है कि यदि मैं कर्म करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा कर्म तो विकर्म है, अपराध लगेगा। तो कर्म योग नहीं समझ में आया उसको, कर्म योग की बदले में विकर्म ही समझ में आया है, और इसको लगता है कर्म करूंगा तो अपराध लगेगा, नहीं करूंगा तो ज्ञान योग है। तो अर्जुन भगवान को कहता है कि यदि ज्ञान योग या बुद्धि योग बेहतर है, फिर आप क्यों मुझे बोलते हो कि कर्म योग करूं? तो अर्जुन ने जब दूसरा चैप्टर सुना तो दूसरे चैप्टर में भगवान ने बहुत बार कई बार ने शांति की बात की है, जैसे कि अगर आप बुद्धि योग से कार्य करोगे ना तभी आपके जीवन में शांति आएगी। जैसे श्लोक नंबर 66 में भगवान ने कहा कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि यदि नास्ति बुद्धि युक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो बुद्धि योग में कार्य नहीं करता है, कि जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है और उसका मन स्थिर नहीं होता है, जिसके बिना शांति संभव नहीं है और शांति के बिना सुख संभव नहीं है। उसके बाद श्लोक नंबर 71 में भगवान ने कहा कि है ना, सशांति मापनोति नकामकामी, कि वही शांति प्राप्त कर सकता है। और फिर 70 में भी कहा और 71 में भगवान कहा सशांति माधिगच्छति, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन के मन में ऐसा आ रहा था कि देखो भगवान तो शांति की बात कर रहे हैं, और जब मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में तो शांति संभव नहीं है ना, युद्ध तो ना और भी अशांत कर देता है जीव को। भगवान जो शांति की बात कर रहे थे ना, वो तो अंतरंग शांति की बात कर रहे थे, कि यदि जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा तो उसका हृदय शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है, अर्जुन को बाह्य शांति दिख रही है कि अगर युद्ध करूंगा तो जाहिर सी बात है अशांति हो जाएगी। तो मतलब अर्जुन को एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं कि ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, आप तो खुद कहते हो कि बुद्धि योग जो है वो कर्म योग से ज्यादा बेहतर है, फिर आप तत्किम कर्मणि घोरे मां, फिर आप मुझे इतने घोर कर्म यानी युद्ध के कर्म में मुझे लगा क्यों रहे हो, नियोजयति केशवा। फिर इस श्लोक में भगवान के दो नामों को उच्चारण किया है अर्जुन ने, एक तो जनार्दन है। जनार्दन का मतलब होता है कि जो जन उनकी शरण में आए उनकी रक्षा करने वाले, यानी कि जो भगवान की शरण में आए उनकी रक्षा करने वाले को बोलते जनार्दन। और अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए मतलब तोड़ा जाए तो जन अर्दन मतलब जन को दुख देने वाला। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप तो क्योंकि अपने शरण में आने वाले सब जीवों का पालन करते हो, उन्हें संतुष्ट करते हो, फिर आप मुझे ऐसा आदेश क्यों दे रहे हो जिससे कि मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन फिर आगे भगवान को अर्जुन कहते हैं केशवा नियोजयसि केशवा। केशव में दो शब्द आते हैं, क और ईशा। क से का मतलब होता है ब्रह्मा और शव का मतलब होता है विष्णु शिवजी, यानी ब्रह्मा और शिव जिस भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, वो पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा और शिव जी का निवास होता है। कृष्ण की पूजा से ब्रह्मा और शिव जी की पूजा अपने आप हो जाती है, तो इसलिए भगवान को केशव कहा गया। केशव के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक वो जिसके केश बहुत सुंदर होते हैं, दूसरा वो जो केशी राक्षस को मारने वाला है। और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि आप ब्रह्मा और शिव के भी पालन करने वाले हो, तो ब्रह्मा और शिव जी को भी तो आपके आदेश का पालन करना होता है ना, तो डेफिनेटली मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं तो जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा ही, तो लेकिन आप मुझे ऐसे आदेश दे रहे क्यों हो? फिर आगे फौरन से अर्जुन अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने जो अभी मुझे बताया व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोहय शिवम, आपने तो बिल्कुल सही बताया होगा, आप तो कभी भी गलत उपदेश दे नहीं सकते, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है तो आपके महान वाक्यों को अच्छे से समझ नहीं पाई, क्योंकि वो मिश्रित किए हुए थे। एक साथ बताया ना आपने, बुद्धि मोह शिव में, तो आप अब क्या करो, मिला के नहीं बताओ, तद एकम वद, फिर मुझे एक ही बात बताओ, निश्चित निश्चित रूप से बताओ, ये न श्रेय हम आपनोयात, कि जिससे मुझे वास्तविक श्रेय वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर अर्जुन को कौन से श्लोक पे मोह आ गया था, श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 49 में जो भगवान ने कहा था, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय बुद्धि योग के द्वारा जो अवर कर्म है उसको त्याग कर दो। बुद्धि योग का मतलब अर्जुन को लग रहा है कि संन्यास ले लो, बस काम करो ही नहीं, बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग में चले जाओ, काम अपना छोड़ दो, और क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो अवरम है, अवरम मतलब जो वर प्राप्त, अवर मतलब जिससे अच्छा वर प्राप्त होने वाला नहीं है, जो अपराध है, ऐसा काम से दूर रहो। अर्जुन को ऐसा लग रहा है, भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि ये अवरम कर्म छोड़ के बुद्धि योग को अपना दो। लेकिन भगवान यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं कि बुद्धि की शरण लो, मतलब आप ज्ञान से काम करो, और कार्य कैसे करो, कार्य कर्म योग में रहकर करो, क्योंकि जब हम बुद्धि योग से कार्य करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि देखो अगर आसक्त होकर कर्म करोगे ना, मतलब अर्जुन को सिर्फ यही बात समझ में आ रही है, सिर्फ दो ही चीजें समझ में आ रही है कि यदि मैं कर्म करूंगा तो बंधन लगेगा, अपराध लगेगा, नहीं करूंगा तो फिर है ना मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, यानी कि संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान उसको ये बता रहे हैं कि कर्म में भी ऐसा नहीं है कि सारे कर्म बंधन में बांधते हैं। पूरी गीता में भगवान हमें यही समझाते हैं कि यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे ना, तो वो ही वास्तव में निष्काम कर्म होगा और वो हमें बंधन में नहीं डालेगा, बल्कि कर्म योग से तो इंसान को मुक्ति मिलेगी। और कर्म कांड या विकर्म जो है वो बंधन में बांधेगा, और ज्ञान योग फिलहाल अर्जुन के लिए संभव ही नहीं है क्योंकि वो उसका पात्र नहीं है। तो अब अर्जुन को भगवान उत्तर देंगे। भगवान श्लोक नंबर 3 में बताते हैं, श्री भगवान वास लोकेस्मिन् द्विर्धारनिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञान योगेन संख्याना कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, निष्ठा का मतलब होता है कि दो प्रकार की श्रद्धा है, लोगों का जिस प्रकार का स्तर होता है, स्टेज होता है, उसके अनुसार उसकी निष्ठा बनती है। और मैंने पूरा प्रोक्ता बना रखा, ये तो मैंने शुरू से ही बताया, पहले ही बता चुका हूँ, और अभी भी भगवान ने जो श्लोक नंबर 39 में बताया था ना, ऐसा त्यागीता सांख्य बुद्धि योगम तो इमाम सुनो, कि अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग बताया, अब बुद्धि योग बता रहा, बुद्धिया योग तो यह आप अर्थ कर्म बंधन पहले, यदि आप बुद्धि योग में कार्य करोगे तो कर्म बंधन से आप छूट जाओगे। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे बुद्धि योग में कार्य करना कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म के बंधन से छूटना है। इसी भगवान आगे कहते हैं ज्ञान योगे न योग सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, ज्ञान योग वो अपनाते हैं स्तर उसका, देखो दो प्रकार की निष्ठा है ना, तो पहला वो ज्ञान योग वो अपनाते हैं जिनका जीवन बुद्धि है बस, मतलब जिनको केवल ज्ञान के द्वारा ही कर्म करना है, उनको कार्य करने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान योग के लिए ही यानी कि कर्म को त्याग करके ही कार्य करते हैं, फिर वो ना वो कर्म कांड करते हैं, ना ही कर्म करते हैं और ना ही कर्म योग करते हैं। लेकिन कर्म योगे न योगी नाम, जो कर्म योग कर्म करना चाहते हैं ना, उनको कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग कैसे करना चाहिए, कर्म करते हुए भी उसके अंदर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कर्म को नहीं त्यागना चाहिए लेकिन कर्म के अंदर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और इसके लिए भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम सम अधिगच्छति। यानी भगवान कह रहे हैं कि कर्म को त्याग करने से कोई नैष्कर्म्य नहीं बन जाता, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। तुम ये मत सोचो कि तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो तुम नैष्कर्म्य बन जाओगे, और न च संन्यासनादेवम सिद्धिम समधिगच्छति। और ये भी मत सोचना कि केवल संन्यास लेने से ही जीव को सिद्धि मिल जाएगी। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं कार्य करना छोड़ दूंगा और फिर मैं कर्म फल से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, ऐसे नहीं है। तो ये जो श्लोक नंबर 4 है उसमें दो चीजें भगवान ने बताई है। पहले लाइन में ये बताया है कि न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। न कर्मणा यानी कर्म को अनारंभान आरंभ कर ना, अगर कोई कर्म को आरंभ नहीं करता यानी कार्य करता ही नहीं है तो नैष्कर्म्य नहीं हो जाएगा, और केवल संन्यास ग्रहण करने से किसी को परिपूर्णता नहीं प्राप्त होगी। तो पहली जो लाइन है उसको स्पष्ट करते हैं भगवान श्लोक नंबर 5 में। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो कि कार्य करे से बगैर रह सके। नहीं कश्चित क्षणम, एक क्षण भी कार्य के बगैर कोई नहीं रह सकता। और भगवान कहते हैं ये जो शब्द है ना लास्ट पहले लाइन का कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, अकर्म जो है उसको अलग अलग तरह का से उसका उत्तर ट्रांसलेशन आता है। अकर्म के दो मतलब आते हैं, एक तो मतलब कार्य ना करना और दूसरा ये होता है कि कार्य के बंधन में नहीं फंसना, वो भी अकर्म होता है। तो चौथे अध्याय में जो बताया गया था वो ऐसे बताया गया था कि कार्य किस तरह से किया जाए कि वो कार्य ही अकर्म हो, है ना। कि भगवान ने बताया था जो कर्म में अकर्म को और कर्म में अकर्म को देखता, लेकिन यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि कोई प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कार्य करना पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, कि उसको कार्य कंटिन्यूस करना ही पड़ता है, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जीव कार्य नहीं करे। जैसे यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं ना कि कोई ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, या फिर तो वो सोचते हैं कि भाई मैं बहुत काम कर लिया, अभी मैं एक दिन छुट्टी करूंगा, उस दिन काम नहीं करूंगा, है ना। वो कहते हैं भले ऐसा कि उस दिन काम नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन क्या वो कुछ भी नहीं करते, है ना। वो छुट्टी के दिन क्या करते हैं, ज्यादातर लोग मूवी जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, कुछ ना ऐसा अयाशी वाला कुछ खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। तो ये अकर्म तो नहीं हुआ ना, ये तो और भी उनको ज्यादा बंधन में फंसाएगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई एक क्षण के लिए भी अकर्म नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, ध्यान करता है, तो वहां पर भी उसका मन अगर वो परिपक्व नहीं है तो उसका मन कार्य कर रहा है ना, तो कार्य तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता। और फिर श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए कि इंसान अपने हाथों से या अपने इंद्रियों से कार्य नहीं करता है, तो भी मन तो उसका सदैव कर्म में लगा रहता है ना, कर्म इंद्रियों संयम या आस्ते मनस स्मरण। फिर तो और भी इंद्रियार्थान पाप विमूर आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, फिर वो तो मिथ्याचारी हो जाएगा। और भी काम हृदय से फिर भी उसके मन में यही रह रहा है, काम कर रहा है कुछ न जैसे क्षत्रिय है, आप क्षत्रिय हो, अभी अपने इंद्रियों को रोक दोगे तो मुझे काम नहीं करना, लेकिन मन में तो यही रहेगा कि काश दुर्योधन की मैंने ना गर्दन तोड़ के फेंक दी होती। तो मन में कुछ चल रहा हो और हाथों से सिर्फ काम करना छोड़ दें, फिर वो संन्यास थोड़ी होता है। वो संन्यास तो जब हृदय से कामनाओं की इच्छा ही ना हो तब होता है। इसलिए वो तो और भी मिथ्याचारी कहलाता है जो हाथों कर्म इंद्रियों से कार्य करना छोड़ देता है और मन में उस कार्य का चिंतन करता है। और इस बात को भगवान बहुत स्पष्ट करके श्लोक नंबर 7 में कहते हैं कि मिथ्याचारी बनने से बेहतर क्या है यस्चिन्द्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन। इससे बेहतर तो क्या है, इंद्रियाणि मनसा के कोई निष्ठावान व्यक्ति जो है वो अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करता है। कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते, कि वो अपने कर्म इंद्रियों को वश में करता है अपने मन के द्वारा, और फिर भी असक्त कर्म कर्म योग करता है, यानी कर्म इंद्रिय को वश में करता है एंड कर्म योग, और कर्म योग करता है। असक्त का मतलब होता है आसक्ति नहीं रखता, आसक्त मतलब आसक्ति रखना, असक्त मतलब आसक्ति नहीं रखता है, कर्म के अंदर अनासक्त होता है। सविशिष्यते, वो तो अधिक विशिष्ट है, वह अति श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो मगर कर्म के फल में कोई भी आसक्ति मत रखो। और भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 8 में, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्म। देखो अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो तुम्हारे कर्तव्य है, उनको उन कार्यों को करो। कर्म करना ह्य कर्म, अकर्म से यानी कर्म ना करने से कार्य करना बेहतर है, क्योंकि शरीर यात्रा पिसते न प्रसिद्धित अकर्मणा, क्योंकि अगर कोई अकर्म हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा, फिर तो उसके लिए शरीर का निर्वाह करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो श्लोक नंबर 8 है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन को एक क्लियर आदेश दे रहे हैं। देखो, भगवान ने भगवत गीता में डिफरेंट टाइप के श्लोकास बोले हैं, जैसे कुछ में क्या है, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ भगवान एक जानकारी देते हैं। कैसे जानकारी देते हैं, जैसे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, के जिस प्रकार कौमार अवस्था थे किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था से जरा अवस्था में शरीर जाता है, उसी तरह तथा देहांतरम प्राप्त दीर्घतस्त्र नमुह्यते, उसी तरह से दूसरे शरीर में आत्मा परिवर्तित हो जाती है, तो जो धीर होते हैं उसको मोहित नहीं होते हैं। भगवान ने इसमें कोई आदेश नहीं दिया है, भगवान सिर्फ और सिर्फ इसमें बता रहे हैं। इससे भी हमें आदेश ग्रहण करना चाहिए कि हमको धीर बनना चाहिए मगर उसमें मोहित नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान स्पेशली कोई आदेश दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। और कोई श्लोक ऐसे होते हैं जिसमें भगवान अपने विषय में बताते हैं। अपने विषय में कैसे बताते हैं, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रपद, कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मैं तो सबका प्रभु हूँ, है ना, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्वामी हूँ। तो इसमें भी भगवान जो है वो सिर्फ अपने विषय में बता रहे हैं, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे होते हैं ना जिसमें भगवान जानकारी नहीं दे रहे होते, आदेश दे रहे होते हैं। जैसे 18.66 है, जो कुछ है वो सब त्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रजा, सब कुछ त्याग कर मेरी अकेले की शरण में आओ। तो ये इस तरह के जो श्लोक होते हैं जिसमें भगवान आदेश दे रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा वैसे जानकारी वाले में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन से होते हैं जिसमें भगवान कोई आदेश दे रहे हैं। अब श्लोक नंबर 9 में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कर्म योग की परिपूर्णता क्या है, कि हम कर्म के बंधन में कभी ना फंसे। यदि कार्य करने के बाद बंधन लगता है तो फिर तो वो परिपूर्णता नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई, सिद्धि नहीं हुई। तो आखिर कैसे कार्य किया जाए कि कार्य भी हो, क्योंकि कार्य के बगैर तो जीव रह नहीं सकता, लेकिन कार्य करने के बाद उसका बंधन नहीं लगना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान ये जो सृष्टि बनाई है वो केवल इसलिए नहीं बनाई है कि बस जीव यहाँ पर आए और खाली रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीवन भर परिश्रम करता रहे, और ऐसे करते करते संतान उत्पत्ति करने के बाद वही उसको सिखाए कि तुमको यही करना है पूरा जीवन भर। नहीं, ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि जीव इस संसार में आकर इस तरह से कार्य करे कि उसको कर्म का बंधन जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहा है उस कर्म बंधन से छूटकर वो आध्यात्मिक धाम तक पहुंच सके। कर्म करना अनिवार्य है। कर्म से हमें रिनाउंसिएशन नहीं चाहिए, मतलब डोंट रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनाउंसिएशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। कार्य से हमें ना कार्य को नहीं त्यागना है, बल्कि कार्य के बाद जो फल प्राप्त होने वाला है उसका, यदि उसकी आसक्ति नहीं हो, वो अगर भगवान को अर्पण कर लेते हैं तो फिर जीव कर्म बंधन में नहीं फंसता। और कार्य कोई भी करके हम भगवान के उसका फल भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कार्य का अगर फल चाहिए होता है, अगर इच्छा होती है, तब हम गलत काम भी करते हैं, है ना। अगर हमको जैसे जीव गलत काम क्यों करता है, क्योंकि उसको उसका रिजल्ट चाहिए होता है ना। अपराध क्यों करता है, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर फल की कोई इच्छा ही नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर, तो कार्य वो 100% एफर्ट्स के साथ करेगा। कार्य तो वो अच्छे से अच्छा करेगा, लेकिन वो उसके रिजल्ट में यदि उसको ना इच्छा नहीं है तो वो कभी अपराध नहीं करेगा, है ना। कार्य पूरी क्षमता के साथ करेगा, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करेगा। अगर हम सोचें कि अनासक्ति और गैर जिम्मेदारी में क्या फर्क है, अनासक्ति का मतलब होता है कि हम पहले कार्य करें अच्छे से और उसके फल में कोई भी अटैचमेंट नहीं हो, ये है अनासक्ति। और गैर जिम्मेदारी क्या मतलब होता है, गैर जिम्मेदारी मतलब बिफोर द एक्शन, कार्य करने से पहले ही हम उसमें कोई एफर्ट से काम ही नहीं करें, ना। गैर जिम्मेदारी मतलब आप कार्य तो कर रहे हो लेकिन आपको क्योंकि फल नहीं चाहिए इसलिए आप उसको गैर जिम्मेदारी से कर रहे हो। भगवान ऐसे कार्य नहीं करने के लिए बोल रहे। भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध था, तुमको कार्य तो अपना 100% एफर्ट से करना है लेकिन उसके रिजल्ट के लिए कभी भी इच्छा नहीं करनी है। और वो कैसे करना है, भगवान यहाँ पर श्लोक नंबर 3.9 में भगवान जो है वो कर्म योग की परिपूर्णता बताते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यज्ञार्थात मतलब सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ कर्म कांड भी है और यज्ञ भगवान का नाम भी है। जैसे भागवतम के तीसरे स्कंद में मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लेते हैं, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यज्ञार्थात यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई जीव कार्य करता है तो वो तो आपको कर्म बंधन से छुड़ा देगा अन्यत्र। लेकिन अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई भी मोटिव है, कोई भी इच्छा है, तो लोकोयम कर्म बंधन, फिर आप कर्म के बंधन में फंसोगे। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग पर संग समाचार। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तद अर्थम यानी उसी अर्थ से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, क्योंकि तुम मेरे कुंती बुआ के पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुक्त संग समाचार, कि तुम इसी तरह से कर्मों के बंधन से छूट सकते हो जब तुम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य, और इस तरह से तुम हमेशा के लिए बंधनों से, कर्म के बंधनों से छूट जाओगे। अब आगे भगवान यज्ञ की विधि के बारे में बताएंगे, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी विधि होती है जो कि एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज की तरह मतलब कि जैसे पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, अगर हम यज्ञ विधि का पालन करते हैं तो उसके द्वारा हम किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो वो कैसा है, ये यज्ञ जो है वो एक कामधुक इस श्लोक में भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 10 में सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित विश्वत्वम एष वोस त्विष्ट कामधुक। यानी सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, जब भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया, अब इस संसार में क्या होता है, रोज लोग जन्म लेते हैं और पदम पदम यद विपदा, फिर लोग मर जाते हैं, है ना, दुखी होके मर जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि में भेजा ही क्यों, है ना, भगवान क्यों, भगवान तो करुणा के सागर है। तो भगवान ने क्या किया, हम अपनी गलती के कारण इस सृष्टि में तो आए, लेकिन साथ साथ में भगवान ने यज्ञ की विधि को भी भेजा। और पुरोवाच प्रजापति, और ये प्रजापति को यानी ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया कि इस यज्ञ के द्वारा ही सब लोग सुखी हो सकते हैं। अनेन प्रसविश्वत्वम, और ये जो यज्ञ है, एष वस्तुष्ट काम दुख, ये काम दुख की तरह है। काम दुख क्या होता है, एक काम धेनु गौ होती ना, उसके नीचे बैठकर या उसके द्वारा हम जो चीज चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है, बोलते काम धेनु। तो यज्ञ भी एक काम धेनु गौ की तरह है। तो उसके यज्ञ के द्वारा यदि हम सब काम कर्म के स्तर पर यज्ञ करेंगे तो क्या होगा कि हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः इस भौतिक जगत में भी सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भगवान के लिए यज्ञ करते हैं तो ये यज्ञ जो है वो डायरेक्ट से हमको भगवत धाम तक लेके जाता है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो फिर वो भगवत धाम के लिए जाएगा। यदि हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भौतिक स्टेज पर कार्य करें तो वो हमें स्वर्ग। तो ये यज्ञ एक ब्रिज की तरह है जो जिधर भी जीव की इच्छा हो, काम दुख की तरह है, तो जीव को अपने इच्छा के अनुसार वो वस्तु प्रदान कर सकता है। तो इस अब आगे के श्लोकों में भगवान जो है इसी यज्ञ को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करके बताते हैं। अब भगवान श्लोक नंबर 9 से लेकर 16 तक यज्ञ की विधि के विषय में जो बता रहे हैं, उसमें ये यज्ञ इसी भगवान बता रहे हैं क्योंकि हर एक जीव जो गृहस्थ है, वेदों में वर्णन है कि हर किसी को पंच महायज्ञ अवश्य करने होते हैं। उसमें क्या होता है, एक देवताओं के लिए यज्ञ होते हैं, दूसरे पितरों के लिए होते हैं, तीसरे मानवों के लिए होते हैं, चौथे पशु पक्षियों के लिए होते हैं, और पांचवें ऋषि मुनियों के लिए होते हैं। क्योंकि जब जीव इस संसार में रहता है तो वो अकेला नहीं जी सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं बगैर किसी की सहायता के अकेले जी सकता हूँ, जैसे देवताओं के बगैर, है ना। देवता जो है वो हमें कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे जल प्रदान करते हैं, अन्न प्रदान करते हैं, सूर्य प्रकाश प्रदान करते हैं, है ना। उसके बाद है ना जो दूसरे मनुष्य होते हैं वो भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, जैसे किसान खेती करते हैं, फैक्ट्रीज में है ना अनाज जो है वो आटा बनाते हैं, और फिर दूसरी हर जगह से अगर हम देखें तो हर तरह से हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, मनुष्यों के ऊपर और पशुओं के ऊपर, जैसे हम दूध पीते हैं, गाय का दूध पीता है, और इस तरह से तो जैसे बैल जो है वो खेती करता है, और ऋषि मुनियों इन सब के लिए हमको यज्ञ करना होता है। पितरों के लिए यज्ञ क्यों करना होता है, क्योंकि पितरों के द्वारा हमको ये शरीर मिला है, हमारा कुल मिला है, और ऋषि मुनि जो है उनके द्वारा हमको वेद शास्त्र मिले हैं। तो इन सब के लिए हमको कुछ न कुछ यज्ञ करना होता है, कुछ न कुछ करना होता है, जिसके द्वारा इसके लिए भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सतः, कि देवताओं को यदि हम यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर हमें भी पुनः प्रसन्न करते हैं, और इस तरह से देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो ये सहयोग हो जाता है तो उससे क्या होता है, सबका कल्याण होता है। लेकिन भगवान अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं परस्परम भावयन्तः, इस तरह से उनके अंदर जो सहयोग होता है, श्रेय भगवान कहते हैं श्रेय परमाप्यसतः, कि आप यदि श्रेय प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से यही पूछा था यह श्रेय से अनिश्चितम रोहितम में, तो उसके लिए श्रेय क्या है कि जब जीव की बुद्धि इतनी विकसित हो जाए, अगर कोई ये सोचे कि जो कुछ भी मुझे चाहे देवताओं के लिए द्वारा मिल रहा है, चाहे पितरों के द्वारा मिल रहा है, चाहे मानवों के द्वारा मिल रहा है या ऋषि मुनियों के द्वारा, वास्तव में मुझे जो कुछ भी किसी के द्वारा भी मिलता है वो सब किसी और की नहीं बल्कि कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो फिर उसको ना दूसरे सब ना कार्य करने की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करके सबकी भक्ति हो जाती है। तो ये सब हमें जो कुछ दे रहे हैं वास्तव में भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो भगवान की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, क्योंकि ये जो भी जहाँ से भी मिल रहा है वास्तव में वो नहीं दे रहे, वास्तव में उन व्यक्तियों के द्वारा मिल रहा है तो भगवान की कृपा से है ना। तो यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो चाहे देवता है, चाहे पितर है, चाहे मानव है, चाहे ऋषि है, चाहे पशु है, सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो जीव को क्या करना चाहिए, स्पेशली भगवान इस संसार में कलयुग में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो क्या है, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि कलयुग में जीव को सबसे बड़ा यज्ञ क्या करना है, भगवान के नाम का जप और संकीर्तन करना है। कलैव नास्तैव 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 जगति रन्यथा, न कर्म कांड पॉसिबल है, न ज्ञान कांड पॉसिबल है, न और कुछ यज्ञ पॉसिबल है, सिर्फ महामंत्र ही संभव है। इसलिए जीव को केवल महामंत्र ही इतना प्रेम से करना चाहिए ताकि ये सारे यज्ञ जो है वो उसमें आ जाते हैं। इनका को भगवान श्री कृष्ण 12 श्लोक में चरण था, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तय दर्ता न प्रदायेभ्यो यो भोंक्ति स्तेन एव सह। इष्टान भोगान ही वो देवा, यानी जिके देव जो देवता है वो अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो अलग अलग देवताओं के द्वारा पूरी होती हैं। देवताओं के द्वारा हमारे जीवन की अलग अलग आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, धरती माता से जो अन्न उपजता है वो सब्जियां अनाज मिलता है, वरुण देवता हमें जल प्रदान करते हैं, वायु पवन देवता हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये सारे देवी देवता हमको कुछ न कुछ तो दे रहे हैं, तो उसकी बदले में क्या करना है। भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भावता, कि यज्ञ करते हैं ना जब, तो देवता यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर हमारी आवश्यकताएं हमें प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, जैसे अगर हम सरकार से जल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, लेकिन बिल नहीं देंगे तो क्या होगा, तो सरकार की नजर में गुनाहगार कहलाएंगे, है ना। और सरकार जो है वो हमारा कनेक्शन भी कर देगी और हमको पनिशमेंट भी देगी। उसी तरह से यज्ञ करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं तय दत्ता ना प्रदाये भी ये बोंगते स्तेन एवसा, अगर कोई यज्ञ वापस से नहीं करता है और देवताओं को प्रसन्न नहीं करता है तो वो चोर है, क्योंकि वो देवताओं की सारी वस्तुओं को तो यूज कर रहा है बट उसका बिल नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण है वो समझने की क्या है, कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे देवताओं के द्वारा मिल रहा है, चाहे मनुष्यों के द्वारा मिल रहा है, चाहे किसी और जीव के द्वारा मिल रहा है, वास्तव में वो भगवान ही देने वाला है। जैसे हमारे ऊपर माता पिता के कर्तव्य होते हैं, माता क्या बोलती है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें इतना पाल पोस बड़ा किया, लेकिन असल में उस माता को भी ये शक्ति किसने दी, भगवान ने दी। माता के स्तन में दूध किसने दिया, तो अगर हम भगवान की सेवा करते ना तो समझो हमारे सारे जो ऋण है ना वो खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई भगवान की नैष्ट की भक्ति करता है तो वो चोर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा करके ये सारे ऋणों को खुद ब खुद ये सारे ऋण खत्म हो जाते हैं। ऐसा भागवत में एक श्लोक आता है, देवर्षिपूतानिर्णाम पितृणाम न किं करुणायं ऋणी च राज। देवर्षि देव यानी देवता, ऋषि मतलब ऋषि मुनि, भूतप्त यानि कि जितने दूसरे प्राणी हैं, निर्णाम मनुष्य हैं और पितृणाम जितने पितृ हैं, अब मैं उनका ऋणी भी नहीं हूँ, उनका किंकर भी नहीं हूँ, क्योंकि गतो मुकुंद परिहर्तकित, क्योंकि मैंने अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना स्टार्ट कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से इन सबको प्रसन्न किया जा सकता है। यही बात को आगे श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यंत सर्व किल विषय भुंगते त्वगम पापा ये पचंत आत्म कारण, कि यदि आपको चोर नहीं बनना है, यदि आप चाहते हो कि मैं इन सबको संतुष्ट करूं, तो कैसे करोगे? यज्ञ शिष्टा सुनो, यानी यज्ञ करने के बाद जो भोजन होता है उसको ग्रहण करने से जीव मुच्यते सर्व किल्बिषे, सारे जितने भी अपराध है उनसे मुक्त हो जाता है। और लेकिन जो अपने इंद्रियों को ये पचंत आत्म कारण, जो अपने इंद्रियों को आनंद देने के लिए भोजन बनाता है और खाता है, वो तो पाप खाता है। भगवान कहते हैं त्वगम पापा, तो हमारी जो प्रथम भेंट है, हम भगवान को जो प्रथम अपनी ओर से भेंट दे सकते हैं, जो कि वो क्या है? अनाज, क्योंकि अनाज तो प्रत्येक जीव खाता है, और वो अनाज यदि हम पहले भगवान को प्रसाद अर्पण करके उसके बाद खाते हैं, तो भगवान कहते हैं फिर आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। तो जीव को बहुत ही सरल एक भगवान उपाय बता रहे हैं कि अगर आपको स्टेन यानी चोर नहीं बनना है, यदि आपको बहुत बहुत अपराध नहीं स्वीकार करने हैं, भूंगते स्टेन, और भगवान कहते हैं त्वगम पापा, नहीं अगर आपको अपराध नहीं ग्रहण करने, तो क्या करो? बस वो भोजन जो है वो भगवान को अर्पण करके उसके बाद खाओ, तो आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हो, तो क्या होता है? भुंजते त्वगम पापा ये पचन आत्म कारणार्थ। आगे भगवान एक सिद्धांत बताते हैं। भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी जितने भी प्राणी हैं वो अन्न पर ही आश्रित हैं, अन्न पर ही डिपेंडेंट हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? भगवान कहते हैं पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्न वर्षा से होता है। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, यानी वर्षा यज्ञ करने से उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे होते हैं? जब जीव अपने नियत कर्मों को पूरा करता है, अपने सारे कर्तव्य जो हैं वो पूरे करना, मतलब यज्ञ करना। अभी भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अनाज के ऊपर जीव डिपेंड करता है, और जो है ना बारिश के ऊपर अनाज डिपेंड करता है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये कैसे बात हुई कि जो यज्ञ करे वहीं पर ही बारिश होती है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे सिटीज कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर यज्ञ नहीं होता तो भी वहां पर बारिश हो रही है ना? हाँ, होती है बारिश, मगर संतुलन नहीं बनता है, मतलब संतुलन एक सिस्टमेटिक नहीं हो रहा होता है। आजकल देखें, बारिश जहां पर होती है वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और जहां पर नहीं होती है वहां पर इतना सूखा होता है कि अकाल पड़ जाता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। तो ये ना कुछ लोग ऐसे चुनौती देते हैं कि ठीक है आपको क्या करना है, अगर बारिश चाहिए तो जाके यज्ञ करो ऐसी जगह पर जहां पर सूखा पड़ा हो। अभी वहां पर जाके एक बंदा या दो बंदे जाके यज्ञ करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वास्तव में हमको तत्व ज्ञान समझना है कि समाज में लाखों लोग हैं जो कि प्रकृति को, नेचर को उसका दोहन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। अभी उसमें से सिर्फ दो या तीन लोग जाकर यज्ञ करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लूं कि अगर एक कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, लेकिन उसका कंट्री के सारे लोग जो है ना वो बिल नहीं देते, सिर्फ दो या तीन लोग ऐसे हैं जो बिल देते हैं, तो क्या जो गवर्नमेंट होगी वो फिर भी उस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी? सबका काटेगी ना। इससे क्या होगा, जो ना मतलब बिल अदा कर रहे हैं उनकी भी कट जाए, उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, है ना? तो एक दो लोग से के सिर्फ यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा और ना ही केवल यज्ञ करना ही काफी है। जो मतलब भगवान ने जो जीवन में वेदों के अंदर जो मनुष्य जीवन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए ना, उनके अनुसार जीना, भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भव, कि जो हमारे नियत कर्म है उनको भी तो हमें साथ साथ में पूरा करना है, तभी यज्ञ संपन्न होता है और तभी जीव यज्ञ कर सकता है। और यज्ञ जब तक नहीं होगा तब तक तो जीव के जिंदगी में कोई आनंद भी नहीं होगा। तो यहाँ तक तीसरे अध्याय के दो विभाग, दो पार्ट कंप्लीट हुए हैं। पहले विभाग में भगवान ने ये बताया अर्जुन को कि देखो, अभी क्योंकि आप ज्ञान योग के लिए पात्र नहीं हो तो आप कर्म योग करो। और इसका कारण भगवान ने बताया कि अगर पात्र हुए बिना व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर देता है या ज्ञान योग स्टार्ट कर लेता है तो वो मिथ्याचारी हो जाता है, तो तुम मिथ्याचारी मत बन। और फिर इसको स्पष्ट करते हुए भगवान ने बताया, देखो खाली कर्म योग ही नहीं होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है और कर्म कांड होता है। तो अर्जुन अगर कहेगा कि भाई कर्म योग करने के लिए भी तो बहुत अनाशक्ति चाहिए होगी, मेरे पास वो अनाशक्ति नहीं है, तो भगवान अर्जुन को फिर यज्ञ के विषय में बताते हैं, ठीक है आपके पास यदि कर्म योग की पात्रता भी नहीं है तो तुम कर्म कांड करो यज्ञ के अनुसार। और कर्म कांड तुम कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए मत करो, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कांड करो। मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कांड मत करो, परंतु ये ज्ञान रखो जैसे भगवान ने बताया, एवं प्रवर्तते चक्रम, के विश्व को चलाने के लिए क्योंकि देवताओं का सहकार चाहिए होता है, तो इस तरह से यज्ञ कांड करो लेकिन अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करो। मतलब यहाँ तक अर्जुन को भगवान ने बताया, देखो तुम ज्ञान योग के लिए पात्र नहीं हो तो तुम कर्म योग करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर्म योग के पात्र नहीं हो तो तुम कर्म कांड करो। लेकिन अब भगवान श्लोक नंबर 17 ऐसे बताएंगे कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्ञान योग के पात्र हूँ, मैं संन्यास लेने के लिए पात्र हूँ, तो भी तुम कर्म योग ही करो, क्योंकि जो बड़े लोग काम करेंगे ना तो जो छोटे होंगे वो उनका ही अनुसरण करेंगे। इसलिए अगर आपको संसार में कोई आसक्ति नहीं है, आत्म तृप्त हो, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हो, आत्म संतुष्ट हो, कार्य करने में कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी संसार के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए तुमको कर्मयोग ही करना चाहिए। अब भगवान श्लोक नंबर 17 में बताते हैं, भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से विमुक्त हो गया है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही आनंद ले रहा है, और आत्मा आत्मरेव अतृप्त, आत्मा में ही तृप्त है आत्मा, तो ऐसा व्यक्ति जिसको भौतिकता से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। अब यहाँ पर भगवान आत्म तृप्त के विषय में तो बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति की बात अभी तक नहीं आई है, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो भगवान उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो कि आत्म संतुष्ट हो। भगवान ने कहा आत्मरते, आत्म तृप्तश, आत्म संतुष्ट, तो तीन दफा आत्मा को संतुष्टि के विषय में तीन शब्द इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि इसी बात पर जोर देना है, क्योंकि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वो और किसी वस्तु से आनंद नहीं रहना है, बल्कि आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मा में ही तृप्त है। और अगर इस श्लोक का श्लोक नंबर 16 से हम तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, भगवान ने कहा अगायुर इंद्रिया रामो, वो केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यर्थ ही जी रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आत्मराम, सिर्फ आत्मा के लिए ही संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि उसके लिए क्योंकि उसकी अपनी कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जो हमारी वैदिक जो हमारी नॉलेज है, उसमें वैदिक संस्कृति में ये बताया होता है कि क्योंकि एक मनुष्य जो होता है, वो जब इस संसार में आता है तो उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे जीवों पर, देवताओं पर आश्रित रहना पड़ता है, उनकी कृपा से ही वो जी रहा है। तो फिर क्योंकि उनसे वो कृपा प्राप्त कर रहा है, तो बदले में उनको कुछ और देना भी होता है, तो इस तरह से उनके प्रति उनका कुछ कर्तव्य होता है। लेकिन यदि हमको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम आत्मा संतुष्ट हैं, केवल भगवान पर ही निर्भर कर रहे हैं, तो आत्मा में ही रहती है, तो फिर हमको कोई कर्तव्य भी नहीं रह जाता है, किसी का कोई ऋण नहीं रह जाता। मतलब समाज में हम लोग रहते हैं ना, तो हमारी कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो जो राइट मांगता है उसको ड्यूटीज भी करनी चाहिए, है ना। जैसे एक संतान की यदि ये हक है, उसको यह अधिकार है कि वो अपने माता पिता से खाना मांगे, वस्त्र मांगे, एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह, ये उसका अधिकार है। तो उसका अधिकार उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसके बदले में डेफिनेटली उसका कुछ कर्तव्य भी होता है कि वो माता पिता का आदर करे, माता पिता की बात माने, माता पिता को संतुष्ट रखने का प्रयास करे। और इसी तरह से जिस चीज के हमारे ऊपर अधिक राइट्स होते हैं, उसके कुछ अधिकार राइट्स होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन आधुनिक समाज में क्या है, हर कोई चाहता है कि हमें राइट्स मिले। वो राइट्स तो चाहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज को करना नहीं चाहते, अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते। बच्चों को लगता है कि माता पिता का फर्ज है कि हमें एजुकेशन प्रदान करें, हमें खाना प्रदान करें, हमें ड्रेसेस प्रदान करें, लेकिन उसके प्रति में हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, वो उनको याद नहीं रहता। उसी तरह से जैसे पति जो होता है, वो चाहता है कि पत्नी जो है वो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी सेवा करे, लेकिन मेरा कुछ कर्तव्य बनता है उसके लिए, वो नहीं देता। उसी तरह पत्नी भी यही चाहती है कि मुझे मिलना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य। हर कोई अपने राइट्स चाहता है, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं चाहता। आजकल हम लोग यही देख रहे हैं, हर कोई क्या चाहता है कि मुझे मेरे राइट्स मिलने चाहिए, पर वो अपना कर्तव्य करना नहीं चाहता है। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि कब तुम कर्तव्य करने से मुक्त हो सकते हो, जब तुम किसी से कोई राइट नहीं मांगते हो, जब तुम अपने अधिकार नहीं मांगते हो। तो फिर भगवान कहते हैं, यस्त्वा मरति रे वस्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। जो आत्मतृप्त हो जाता है, जीवन जीने के लिए समाज की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है, आत्मन्येव तो संतुष्ट, वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तस्य कारम न विद्यते। फिर उसको कोई भी ना कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक में भगवान ने कहा यस्तु मतलब लेकिन यदि कोई ऐसा है जो कि आत्मा तृप्त हो, आत्मा में ही रति हो, आत्मा से ही संतुष्ट हो, तो उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन को भगवान ये भी हाथ में बता रहे हैं कि तुम अभी उस स्टेज पर नहीं हो, इसलिए तुमको कार्य करना पड़ेगा। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अभी इस स्थिति पर नहीं हो, परंतु यदि कोई होता है इस स्थिति पर, तो उसको तस्य कार्यम न विद्यते। और इसी चीज को भगवान श्लोक नंबर 18 में और भी स्पष्ट करके बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतो नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्यत। नैव तस्य कृते नार्थो, यानी उसके लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है जो कि एकदम सबसे मतलब किसी से कोई याचना करता ही नहीं है, किसी से कोई अपने राइट्स मांगता ही नहीं है, और ना कृते नहीं कश्चन, उसको कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ऐसा कारण होता है कि वो अपने कर्तव्य नहीं कर, मतलब वैदिक दृष्टि से उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करना हो या नहीं करना हो, नहीं करना है नहीं करना, इसके लिए भी उसके मन में कोई न चास्य सर्वभूतेषु। वो व्यक्ति कैसा होता है जो किसी भी अन्य भूत यानी प्राणी पर निर्भर नहीं होता है, वो आत्म संतुष्ट होता है उसको किसी भी, जब तक देखो संसार में हम ले रहे हैं ना, तो जब तक शरीर है तो हमको औरों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। जाहिर है जीव खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, संसार में हर चीज की उसको जरूरत होती है, तो दूसरों पर तो हम निर्भर होते। लेकिन यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं जो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहता। जैसे श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण जो आते हैं वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, परंतु वो स्थिति बहुत बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है भले, लेकिन ना संसार में यदि कोई अयाचक वृत्ति स्वीकार करता है, जैसे माधवेंद्रपुरी किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अगर उसको भगवान की कृपा से कुछ मिल जाता था तो ठीक है, वरना वो उस दिन उपवास करते थे। तो वो व्यक्ति जो किसी भी जीव पर जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं है, न सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्यता, तो ये एक सत्य है कि जब तक जीव संसार में है तो दूसरों पर निर्भर ही है, पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो अपने निर्वाह के लिए भी किसी से कोई याचना नहीं करता, किसी से कोई मांग नहीं करता है, वो संतुष्ट है जैसा भी उसको है ना भगवान जीवन दे रहे हैं उस पर, तो फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो उस स्तर पर नहीं है, या अर्जुन इसीलिए भगवान कहते हैं हमको अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्लोक नंबर 19 में एक आदेश देते हैं, भगवान कहते हैं तस्माद् असक्त सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्माद् असक्त सततम्, असक्त मतलब आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति यदि कर्म फल में नहीं है तो फिर भगवान कहते हैं सततम कार्य समाचर, कंटिन्यूस कार्य करो, सम आचर मतलब अच्छे से कार्य करो, असक्तो ह्याचरण कर्म, वापस भगवान आचरण के ही बोला, असक्तो यदि अनासक्त होकर या आप कार्य करोगे तो उसका लाभ क्या होगा, परम आपनोति पुरुषः, यानी इससे आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि जीव को अपने कर्मों में, अपने कर्मों के फल में कोई आसक्ति ही नहीं है तो फिर उसके कर्म बंधन कट जाएंगे और उसे भगवान की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर अर्जुन को ये मन में विचार आता है कि मैंने तो बस दो ही मार्ग सुने हैं, एक मार्ग ये है कि आप गृहस्थ में रहकर कार्य करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, और दूसरा मार्ग है संन्यास आश्रम ग्रहण करो और अपने कर्तव्यों को तोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन आप ये क्या बता रहे हो कि तस्मात् असक्त सततम् कार्यम कर्म समाचर, अपने कर्म को करो, अपने असक्त ह्याचरण कर्म, अनासक्त होकर अपने कार्यों को करो और इससे आपको परमात्मनोति पुरुष, आपसे आपको इससे परम की, परम भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात मुझे सही तरह से समझ में आई नहीं है, अगर उसका कोई उदाहरण है तो आप उसका उदाहरण दो। तो भगवान अभी एक उदाहरण देंगे कि ऐसा कौन है। भगवान कहते श्लोक नंबर 20 में कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर तो मरहसी। भगवान कहते हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, कर्मणैव हि संसिद्धिम् कंप्लीट परम सिद्धि पूर्णतः उन्होंने प्राप्त की, आस्थिता जनक आदया वो कार्य कर रहे थे अपने, लेकिन इतने अनासक्त होकर कर रहे थे कि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की, और लोक संग्रह में वापी यानी सामान्य लोगों को संपर्शन करते मारसी, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो यहाँ पर जनक महाराज का बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान देते, भगवान के ने जनक महाराज के उदाहरण को इसलिए बताया क्योंकि जनक जो है वो ग्रस्त थे और बहुत ही सुंदर राज्य को संभालते थे, लेकिन फिर भी जनक महाराज जो हैं वो 12 महाजनों में आते हैं। जनक महाराज का ये रूटीन होता था कि उनके दरबार में डेली जो ब्राह्मण लोग हैं वो भागवत कथा करते थे और वो नियमित रूप से उस भागवत कथा को सुनने के लिए आते थे। परंतु कभी कभी क्या होता था कि जब सारे ब्राह्मण जो कथा करने वाले होते थे वो सब आ गए होते थे और दूसरे भी बहुत सारे ब्राह्मण भक्त वहां पर आ गए होते थे कथा सुनने के लिए, और जनक महाराज जो थे वो अक्सर देर से आते थे। तो वहां पर बैठे हुए जो ब्राह्मण लोग जो कथा सुनते थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो कथा वक्ता ब्राह्मण है वो और जनक महाराज दोनों ही गलत है। ये जो कथा करने वाले हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि भगवान की कथा का समय है तो फिर हमको कथा कर लेनी चाहिए, और वो उस राजा है उसका इंतजार करते हैं। और ये राजा वो अपने आप को क्या समझता है ना, उसको कथा का समय है तो फिर कथा में आ जाना चाहिए, पर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है जो कि वो इतना देर से आता है। तो जो ब्राह्मण थे उनको तो दूसरे लोगों के मन की ये बात समझ में आ गई। तो एक बार क्या हुआ कि जनक महाराज जो है वो कथा में आ गए थे, वो कथा चल रही थी। अचानक थोड़ी देर के बाद जब कथा स्टार्ट हो गई थी तो जनक महाराज के कुछ सैनिक आए और आकर कहने लगे, महाराज आपके जो महल है उसके पिछवाड़े में जहां पर आपका बागीचा है वहां पर आग लग गई है। तो जनक महाराज कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जरूरी है आप लोग करो, अभी मैं कथा सुन रहा हूँ। तो वो तो चला गया, लेकिन उस समय जहां पर आग लगी थी ना उसी साइट पर जितने भी जो दूसरे ब्राह्मण श्रवण करने आए थे ना उनके भी छोटे छोटे ना कुटिया थी। तो उनको ऐसा लगा कि अरे आग लग गई, सब लोग विचलित हो गए कि आग लग गई, चलो हम लोग अपनी कुटिया को बचाएं ये करें। तो यहाँ वो सब तो भाग गए, लेकिन जैसे ही वो गए तो महाराज के जो सैनिक थे उन्होंने तो आग कंट्रोल कर लिया था। वो वापिस आए तो जनक महाराज आनंद से बैठ के कथा सुन रहे थे। तो उन सबको इतना आश्चर्य हुआ कि हमारी संपत्ति के कंपेयर में जनक महाराज की संपत्ति तो कितनी बड़ी है, और वो तो राजा है लेकिन उनको अपनी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं थी और हमारा कुछ निग्रह नहीं है, थोड़ा सा कुछ सामान उसके लिए हम कितना चिंतित हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि देखो ये वाकई में कितने अनासक्त हैं अपनी वस्तुओं से। तो भले कभी कभी उनको, क्योंकि जनक महाराज जो हैं वो अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पालन करते थे, तो राजा का कुछ कर्तव्य होता था जिसके कारण वो लेट हो जाते थे, लेकिन जब वो कथा में आकर बैठ जाते थे तो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते थे कि आप भगवान आपको जो करना है वो आपका काम है, आपको खुद ही करना है, मेरा काम क्या है, मुझे आपकी कथा सुननी है। तो बैठ के कथा सुनते थे, आनंद से रहते थे, तो वो एकाग्रता से बहुत ध्यान से कथा सुनते थे। तो यहाँ पर बताने की बात है कि जो राजर्षि होते हैं उनको बहुत ही सुंदर उदाहरण स्थापित करने होते हैं। वो संसार को कैसे बताते हैं कि एक तरह से देखो राजा के कार्यों को भी नहीं त्यागना है, लेकिन दूसरा जो आत्मा के उद्धार के लिए हमारा जो कर्तव्य है उसको भी अच्छे तरीके से पूरा करना है। तो ये समाज के लिए कितना सुंदर उदाहरण होगा कि राजा होकर भी यदि वो अपने कर्तव्यों के साथ साथ भगवत भक्ति कर सकता है तो साधारण लोग के राजा के ऊपर तो पूरे है ना सारे नगरवासियों का भार होता है और एक व्यक्ति के ऊपर केवल अपनी फैमिली का भार होता है। तो राजा जब भी अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते भगवत भक्ति कर सकता है तो दूसरे जिनके पास थोड़े से ही कर्तव्य होते हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने बहुत जोर दिया कर्मण एव ही, कर्मण यानी कर्म से, एव मतलब निश्चित ही, और ही मतलब सेट्रेन सिर्फ कर्म करने से ही संसिद्धि आस्थिता उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। कार्य करने से ही जनक आदि जनक जैसे राजा जो हैं वो कार्य करके ही सिद्धि प्राप्त होते हैं, और कार्य करने से और दूसरा क्या होता है लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह मतलब दूसरों के लिए एक सुंदर उदाहरण स्थापित होता है। संपश्यन कर तुम्हारा, तुमको इसी तरह से अपनी कर्तव्यों को पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है और कार्य करना है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं है ना उनको अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को इस तरह से करना चाहिए कि जो न्यू पाइथ जो नए भक्त हैं उनको उनकी लाइफस्टाइल से उनके जीवन से प्रेरणा मिले कि वो देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं, भक्त भी हैं, और फिर हम उनसे देखकर सीखेंगे और वो जो दूसरे जो नए हैं वो हमको देखकर सीखेंगे कि देखो ये लोग कितने अच्छे से अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। तो हमको दूसरों के लिए ये प्रचार केवल मुख से नहीं होता है, प्रचार तो अपने लाइफस्टाइल से होता है कि देखो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। हमें भगवान एक सत्य बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि आचरतः श्रेष्ठ तत् तदेव तनुजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो मतलब महान लोग होते हैं, वो जो उदाहरण प्रस्थापित करते हैं, यद्यत याचरता श्रेष्ठ यानी वरिष्ठ लोग जो जो कार्य करते हैं ऐसे कार्य करेंगे, वो जो भी सामान्य लोग होंगे ना उसी को ही फॉलो करेंगे। यद यद दो दफा भगवान ने दिया ना, यद मतलब अगर वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो भी, और अगर वो दूसरा यद क्यों कि अगर वो शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे तो भी साधारण लोग क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। अगर कोई जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जो आइडियल होते हैं, अभी आजकल क्या है कलयुग में इतना विकृत हो गया है कि अगर हम किसी बच्चों से भी पूछते ना कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइडियल कौन है, तो वो क्या बताएंगे, कोई हीरो का नाम बताएंगे, कोई क्रिकेटर का नाम बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर और भी है ना थोड़ा सा बुद्धिमान होगा तो क्या बताएगा, जो बहुत ही जो विख्यात से जो बिजनेसमैन होंगे उसके वही उनके आदर्श है। आजकल के समाज में लोगों को अच्छा आदर्श मिलना संभव नहीं, आज से अगर हम 50 साल पीछे भी जाएं तो लोगों के आदर्श बहुत अच्छे होते थे, आइडियल्स वो अच्छे होते थे, जैसे महात्मा गांधी को आदर्श बना दिया और जो बहुत ही अच्छे जो हमारे हमारे संस्था के बहुत ही जो अच्छे बालक थे, बालवीर वगैरह, हनुमान जी किसी को कोई बोलते थे कि हमारे आदर्श, जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जो कार्य करते थे उनके लिए बताया जाता था। तो जैसा हमारा आदर्श होता है ना, जो उसी के अनुसार हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ भक्तजन हैं, जो कार्य करते हैं ना उनके अनुसार जो जूनियर हैं वो कार्य करने वाले। एक बार श्री प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे थे कि एक बार एक स्त्री भक्तिस्थान सरस्वती गोस्वामी से मिलने के लिए आई कि मुझे आपसे पर्सनल कुछ बात करनी है। तो भक्तिस्थान सरस्वती गोस्वामी उस समय बहुत ही वृद्ध थे और ना वो जो स्त्री थी, वो जो महिला थी, वो उनकी पोती की उम्र की थी, लेकिन उस समय भी भक्तिस्थान सरस्वती गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मैं ना स्त्रियों से नहीं अकेले में मिलता हूँ, तो आप अपने ना किसी माता पिता के साथ आइए या फिर किसी के साथ आइए, मैं अकेले में आपसे बात नहीं कर। तो मतलब एक सिद्धांत एक ना क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से, उसी तरह श्री प्रभुपाद जी कभी भी जीवन में, हालांकि अमेरिका में रहते थे, कभी भी स्त्रियों से अकेले मिलते नहीं थे। तो असल में यहाँ पर बताना क्या है कि आपके आचरण की आवाज आपके शब्दों से 100 गुना ज्यादा तेज होती है। स्त्रियां बुरी नहीं होती हैं, परंतु एक समाज के लिए यह उदाहरण है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि स्त्रियों की अकेले में संगति जो है वो हमारे मन में उससे बुरी वासना आ जाती है, इसलिए इसका प्रभाव बुरा बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए जो भी है ना जो सीनियर भक्त होते हैं, जिस प्रकार का उदाहरण वो क्रिएट करेंगे तो फिर ऐसा ही है ना जो जूनियर लोग होंगे ना उसका फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण। परंतु विडंबना क्या है कि इस संसार में आजकल जो जनरेशन है उसको अच्छा संग प्राप्त हो ही नहीं रहा, अच्छा उदाहरण उसके लिए कुछ प्रस्तुत हो ही नहीं रहा है। अभी जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत्य संग्र त्याग ए वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्तरा, कि इस संसार में दो लोगों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। एक जो स्त्री का संग नहीं करना चाहिए वो तो वैसे ही अवैध संग नहीं करना चाहिए, और उस पुरुष का संग भी नहीं करना चाहिए जो स्त्री की ओर आकर्षित हो, क्योंकि उसके साथ संग करके भी जीव का जो है ना वो मन मलिन होता है। अभी संसार में अगर हम देखें तो हर जगह पर या तो स्त्री संग मिलेगा या फिर उन पुरुषों का संग भी उनका मिलेगा जो कि ना स्त्रियों की ओर आकर्षित है। और दूसरा ये भगवान कहते हैं कृष्ण अभक्त, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका संग नहीं करना चाहिए। तो हर जगह हमको उन्हीं व्यक्तियों का संग मिल रहा है जिनका हमें संग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर इसके लिए हमको जो भक्त हैं उनको दूसरों को संग प्रदान करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि अभी तक बहुत ही भौतिक जीवन से आसक्त हैं, किसी प्रकार से स्त्रियों को ऐसी स्त्रियों की ओर है ना अपना है ना योगदान देना चाहिए कि उनको अपना जीवन और अपने जीवन से रिलेटेड भगवान की भक्ति के प्रति जो उनका प्रेम है और उसके द्वारा जो जीवन में संतुष्टि है उसके विषय में उनको उदाहरण प्रस्थापित करके बताना चाहिए। और पुरुषों को इस तरह से बताना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य केवल घर गृहस्थी या धंधा बिजनेस ही नहीं है, बल्कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो उसके लिए एक सुंदर उदाहरण स्थापित करना हम सबका कर्तव्य है। भगवान बोलते हैं सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि हम सबका ये कर्तव्य है कि सामान्य जनों के लिए हम उदाहरण बने ताकि सब लोगों को उससे प्रेरणा मिले और सबका जीवन जो है वो पवित्र हो जाए। इसलिए भगवान अब आगे बता रहे हैं कि ये केवल तुम्ही नहीं करना, बल्कि मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूँ, मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मैं भी यही कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, भले ही तुम मुझे अपना संबंधी समझते हो, लेकिन मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ पर पहली बार भगवान अपना स्तर बता रहे हैं कि भले ही मैं तुम्हारा संबंधी हूँ पर मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहते फिर भी, यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं ए पार्थ, ये बहुत ही अंतरंग है संबंध के विषय में बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी माता प्रथा जिसके तुम पुत्र हो वो मेरी बुआ है, लेकिन फिर भी तुम ये मत समझना कि मैं कोई साधारण क्षत्रिय राजकुमार हूँ। मैं तो परम सत्य हूँ, भले पूरे ना इतना स्पष्ट नहीं बता रहे भगवान, लेकिन फिर भी बता रहे नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करने का कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, है ना, किसी पर निर्भर नहीं हूँ। और दूसरा नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, है ना, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, कुछ संसार में ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करना है, और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है। तो भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कार्य करता रहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं। दूसरे जो धर्म है उनके अंदर एक प्रश्न आता है कि हम सनातन धर्म में भगवान कार्य करते क्यों हैं, क्यों भगवान आते हैं, क्यों, क्योंकि और किसी धर्म में ऐसा बताया ही नहीं जाता है कि भगवान कोई कार्य करते हैं या भगवान उनके लिए देयर आइडियाज ऑफ गॉड इज अ फ्रोजन परफेक्शन, यानी भगवान कुछ कार्य करते नहीं है, भगवान तो बस ना कार्य कुछ उनको करना नहीं होता है, सब कुछ हो रहा होता है, इससे उनको ना कभी जन्म लेना पड़ता है। और जैसे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें यही बताया जाता है कि भाई अगर हम, क्योंकि हम अगर जाते हैं गोलोक में भगवान के धाम में, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर भगवान के साथ कोई संबंध कहीं बताया नहीं जाता कि भगवान के साथ भी संबंध संभव है और जीव आत्मा तभी संतुष्ट होती, ऐसा नहीं बताया जाता। बस ऐसे बताया जाता है कि वहां पर हेवन है, वहां पर क्या होगा कि आपके दादा होंगे, आपकी दादी होंगी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब होंगे, वहां पर सब आनंद से रहेंगे, वहां पर कोई कष्ट नहीं होगा। तो साधारण जीव का कोई आकर्षण, जिनके पास बुद्धि है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कोई हेवन नहीं है, तो मेरा अपने घर के जैसा लग रहा। और इसके अलावा जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या बताया जाता है कि भगवान जो है वो कोई कार्य नहीं करता, और भगवान उनको अपना धर्म बहुत महान है ये बताने के लिए उनको ये बताना पड़ता कि भगवान का कार्य जो है उसको समझा भी नहीं जा सकता, उसको बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान तो इतने दिव्य हैं कि उनके विषय में कुछ धारणा ही नहीं, संभव ही नहीं है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या कार्य करते हैं। लेकिन ये वैदिक संस्कृति में भगवान की लीलाओं के विषय में बताया जाता है कि भगवान की लीलाएं जो है वो किस तरह से है। रामानुजाचार्य बताते हैं कि भगवान का कार्य जो है वो एक खेल की तरह है, और भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान का कोई आदेश नहीं, भगवान बस स्वेच्छा से खेल की तरह अपनी लीलाएं करते हैं। लेकिन इसी बात को बलदेव विद्याभूषण और भी आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जीव खेलता तब है जब वो उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ, तभी मुझे खेल करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त करने की मुझे आवश्यकता है। मतलब भगवान को आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भगवान कार्य क्यों करते हैं? तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि भगवान का कार्य आनंदित व्यक्ति के नृत्य के बराबर है, है ना? जैसे मैं अगर खेल रही हूँ तो मुझे उससे आनंद प्राप्त करना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो नृत्य कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इतना आनंदित है, इतना आनंदित है कि अपने आनंद को केवल एक्सप्रेस करने के लिए वो कार्य करता है। तो इसीलिए भगवान संपूर्ण है, भगवान परिपूर्ण है, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। नमे पार्थास्ति कर्तव्य, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्त एवच कर्मणि, मैं सदैव कार्य करता रहता हूँ, और उससे क्या लाभ होगा भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 23 में, भगवान कहते हैं यदि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य अतन्द्रतः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यदि अहम् न वर्तेयम्, कि अगर मैं अपने कार्यों को अच्छे से नहीं करूंगा, जातु कर्मण्य अतन्द्रतः, अतन्द्रतः का मतलब होता है बिल्कुल सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं करूंगा तो क्या होगा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, तो सारे लोग जो हैं वो मुझे उदाहरण बनाकर अपने कर्तव्य करना शुरू कर देंगे अपने, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी से नहीं करूंगा तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। अब ये जो इस श्लोक में जो सेकंड लाइन है मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, सेम वही लाइन जो है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में सेम वही लाइन है, सेकंड लाइन जो है कि मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, लेकिन उसमें और इसमें मीनिंग में बिल्कुल अंतर है। वो जो शब्द भले वही हैं, लेकिन जो इसका मतलब है वो संस्कृत जो है उसका जो फ्लो है वो एकदम अलग है, लेकिन वो जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से नहीं करूँगा, तो ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान धराधाम पर थे, जब द्वारिका में रहते थे, तो वो भगवान अपनी समस्त पत्नियों के साथ अपने हर महल में सारे काम बहुत ही सावधानी से करते थे, जैसे सुबह उठना, ध्यान लगाना, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, मतलब सुंदर आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान पूरे कर्तव्य करते थे अपने, ताकि दूसरे जो अन्य जीव हैं उनको भी है ना इस बात का अच्छे से पता चले कि हमको अपने कर्तव्यों को किस तरह से निभाना है। और भगवान आगे इसी बात को बता रहे हैं कि अगर मैं अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं करूंगा और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा। भगवान कहते हैं उत्सिरे युरे मेलो का नकुरिया कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यास में मा प्रजा। भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। उत्सी दे युरमेलो का नष्ट हो जाएंगे सारे लोग न कुरियात कर्म चेदहम अगर मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से नहीं निभाऊंगा। और फिर क्या होगा सारे लोगों के नष्ट होने के बाद क्या होगा संकरस्य च कर्ता स्याम इस प्रकार से मैं अवंश जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा। संकर वर्ण संकर उत्पन्न होगा और उपहन्या इमाम प्रजा और इस तरह से संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे। तो ये जो है अर्जुन ने युद्ध ना करने का जो तीसरा कारण बताया था ना कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो सारे जो वरिष्ठ जन है उनका नाश हो जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न होगा युद्ध करने से होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर समझा कि अगर आप अपने कर्तव्य को पालन करते हुए युद्ध नहीं करोगे ना तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा। कैसे वर्ण संकर उत्पन्न होगा कि देखो अगर क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय यदि पापियों का नाश नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्य नहीं करेंगे पापियों को दंड नहीं देंगे तो क्या पापी लोग बढ़ते जाएंगे ना। और ये जो पापी लोग हैं वो अनेक स्त्रियों को दूषित कर देंगे भ्रमित कर देंगे इसीलिए उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो जो क्षत्रिय हैं उनको जन संरक्षण करने के लिए जो कार्य करना जरूरी है वो अवश्य करना चाहिए अपने कर्तव्य को अवश्य पालन करना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ के एक क्वेश्चन तो उठता है। भगवान कहते हैं यदि मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा नहीं करूंगा तो सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो इतने आदर्श कार्य नहीं करते है ना। भगवान तो चोरी करते हैं भगवान तो रासलीला खेलते हैं और गोपियों के वस्त्र धारण करते हैं तो यहाँ पर कहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई उत्सिरे युरमेलो का कि यदि मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करूंगा तो लोग नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान तो कोई आदर्श कार्य कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक राजऋषि के रूप में उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने जब सामाजिक जिम्मेदारियां स्वीकार की तब वे बड़े आदर्श कार्य कर रहे थे लेकिन जब भगवान बचपन में छोटे से थे जब वो वृंदावन में ब्रज किशोर थे तभी तो वो समाज के राजा नहीं थे ना। लेकिन जब भगवान ने सामाजिक रूप में एक राजनीतिक नेता की जिम्मेदारी स्वीकार की भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं जो बड़े लोग आचरण करते हैं तो सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान ने जब एक आदर्श राजा का पद संभाला तब उन्होंने सिर्फ आदर्श कार्य ही की लेकिन जब वो वृंदावन में थे तब तो वो ब्रज किशोर थे छोटे से बालक थे और वृंदावन में तो भगवान ने 11 साल से अधिक वहां पर समय बिताया नहीं। तो छोटे बच्चे होते हैं जो 10 11 8 9 साल के तो वो तो ऐसे कार्य करते हैं मतलब जो के आनंद करने के लिए बच्चे आपस में खेलते हैं। लेकिन फिर भी कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि भले बच्चे साधारण जो बच्चे होते हैं वो तो कोई भी हरकत कर सकते तो वो भगवान स्वयं जब आते हैं संसार में तो वो ब्रज गोपिकाओं के साथ नृत्य क्यों करते हैं या मक्खन क्यों चोरी करते हैं। तो आचार्यगण इसका उत्तर देते हैं कि जब भगवान स्वयं साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन जब इस भौतिक जगत में आते तो केवल आदर्श प्रसाद स्थापित करने के लिए नहीं आते बल्कि भगवान इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का रस प्रदान करने के लिए आते हैं। जो धर्म की स्थापना है या जो आदर्श की स्थापना है वो तो भगवान के कोई भी अवतार आके करते हैं प्रभु श्री राम आके करते हैं और दूसरे दूसरे अवतार अन्य जो भी आते हैं वो आदर्श तो स्थापित करते ही हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पर आते हैं तब वो आध्यात्मिक जगत को प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। तो ऐसा बताते हैं जो आचार्यगण हैं कि सारे जो भी धर्म हैं उसमें पुरुष और स्त्री का जो आकर्षण है उसको नकारा गया है, उसको स्वीकृति नहीं दी गई। मतलब ये बताया गया है कि पुरुष स्त्री का जो आकर्षण है वो हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन किसी भी धर्म में ये बताया नहीं गया कि पुरुष और स्त्री का आकर्षण आकर है क्यों, है ना। जब भी कोई स्त्री युवा अवस्था में आती है या जब पुरुष जब युवा अवस्था में आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको एक अधूरापन लगता है और उनको अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए वो एक स्त्री या पुरुष का संग चाहते हैं। तो ये आकर्षण आखिर हो क्यों रहा है? तो जीव जब भगवान का अनुकरण करने के लिए इस भौतिक जगत में आता है तो जीव स्वयं आनंदित होने का प्रयास करता है, इसीलिए उसकी इच्छा होती है और वो आकर्षित होता है स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, क्योंकि वो भोक्ता बनना चाहता है। तो जैसे 15वें अध्याय में बताया गया है कि जो भौतिक जगत है वो एक उल्टा वृक्ष यानी वास्तविक जगत के वृक्ष का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये पुरुष और स्त्री का आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवान यहाँ पर रासलीला नृत्य का प्रदर्शन क्यों करते हैं? वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ है और कैसे प्राप्त हो सकता है। मतलब भगवान रासलीला का प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम भी भगवान का अनुकरण करें, मगर भगवान इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक प्रेम कहाँ है और अगर हम चाहें तो उस प्रेम नगर में प्रवेश कर सकते हैं। इसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, डोंट ट्राई टू इमिटेट, ट्राई टू पार्टिसिपेट। के रासलीला जो है उसमें उसका अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करनी है, बल्कि भगवान की रासलीला में सहभागी होने का प्रयास करना है। और हम भगवान के पार्षद बनके भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। और रही बात भगवान के माखन खाने की, तो भगवान माखन क्यों चोरी करते हैं? वैसे तो भगवान जब यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं तो भगवान दिखाते हैं कि यशोदा मैया भी उसी मुख में है, यशोदा मैया का जो वृंदावन है पूरा वो उसी मुख में है, घर भी उसी मुख, तो घर का जो माखन है वो भी उसी के अंदर। तो भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो चोरी कर रहे हैं। ये जो भगवान लीला करते हैं वो तो केवल अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए करते हैं। तो ये तो भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि भगवान जब अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ना, तो भगवान भले ही वो परम सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन वो इस तरह से अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अभी जैसे भगवान का नाम लेकर हम सत्य बोलते हैं, है ना, जैसे भगवान के सामने आकर हम सत्य बोलते हैं, या फिर है ना हम बोलते हैं भगवान की कसम खाते हैं सत्य बोलते हैं। वो भगवान जो कि सत्य का प्रमाण है, वो जब वृंदावन में आते हैं फिर क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं, है ना, माखन चोरी करते हैं। कभी घर कहीं जाकर यशोदा मैया कहीं बाहर गई होती है और भगवान जो है वो माखन चोरी करके खाते हैं। फिर यशोदा मैया आती हैं और उनसे पूछती हैं कि ये माखन किसने खाया? तो कृष्णा बोल रहे मैंने नहीं खाया। तो फिर यशोदा मैया कहती है वच सत्यम वदहे मुरारी, सत्य बोलो झूठ मत बोलो। तो कृष्णा डरने लगते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तो वो त्रिलोकी की नाथ है और उनके ऊपर उनके जो प्रेमी भक्त हैं वो किस तरह से अपना अपने वश में भगवान को करते हैं, किस तरह से भगवान अपने भक्तों के से भयभीत होते हैं, किस तरह से वो तो तीनों लोक जो है इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। तीनों लोक के जितने भी देवी देवता हैं वो भी इस दृश्य को देखने के लिए तरसते हैं। तो ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, लेकिन यहाँ पर हमको भगवान ये समझा रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिए कि हम उस स्तर तक पहुंच सके और भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करके आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके। तो यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को समझा दिया है कि भले ही आप जो है वो कर्म ज्ञान योग के स्तर पे हो तो भी आपको कर्मयोग ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो कर्मयोग करने से आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा और दूसरा ये कि कर्मयोग करने से आप संसार के लिए एक बहुत ही उचित उदाहरण प्रस्थापित करोगे। तो अब यहाँ से हम लोग श्लोक नंबर 25 से दूसरे ऑडियो में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।